अज्ञेय और उनकी कविता, व्यक्तित्व और कृतित्व। आधुनिक हिंदी भावबोध के इतिहास में अज्ञेय 1911 से 1987 का व्यक्तित्व और कृतित्व केंद्रीय महत्व रखता है। बहुत कम ऐसे लेखक होते हैं जो अपने जीवन और लेखन दोनों में एक अत्युच्च नैतिक मानदंड के निर्वाह के आग्रह से परिचालित रहे हों। अज्ञेय ऐसे ही लेखकों में थे। उन्हें निकट से जानने वाले और उनके काव्य के मर्मज्ञ संपादक पंडित विद्यानिवास मिश्र ने उनके बारे में सत्य ही लिखा है कि उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत मनुष्य के रूप में जब कोई चुनौती अज्ञेय को मिली तो उन्होंने कविता की शरण न लेकर उस चुनौती को व्यक्ति के रूप में ही स्वीकारा, चाहे क्रांतिकारी के रूप में, चाहे फासिज्म विरोधी के रूप में, चाहे स्वाधीनता के पक्षधर के रूप में। आग में कूदे बिना उनसे रहा नहीं गया। उद्धरण चिन्ह बंद। पश्चिम की बुद्धि, पश्चिम का अनुभव, जहां जीवन की पूर्णता और रचना की पूर्णता के बीच एक दुर्निवार अंतर्विरोध देखता है, वहां भारतीय मन की पारंपरिक निष्ठा यही रही है कि व्यक्तित्व और कृतित्व के बीच विरोध नहीं होना चाहिए। अज्ञेय भी अपने मन के दोनों खंडों, चेतन और अवचेतन के बीच तनाव और संघर्ष की बजाय मैत्री ही स्थापित करने के आदर्श से अनुप्राणित रहे और इस आदर्श के निर्वाह में काफ़ी दूर तक सफल भी हो सके, तो इसका कारण यही था कि अपनी परिस्थिति और अपनी संस्कृति दोनों के प्रति आरंभ से ही उनका दृष्टिकोण अत्यंत सजग और दायित्वपूर्ण रहा। उन्होंने जहाँ एक ओर अपनी परिस्थिति के आकलन को संघर्ष युग के साहित्यकार की अनिवार्य जिम्मेदारियों की पहचान और निर्वाह को सर्वाधिक महत्व का काम समझा, वहीं उन्होंने संस्कृति के स्वास्थ्य की चिंता भी बहुत सक्रिय रूप से की। यह अकारण नहीं है कि अज्ञेय निरंतर संस्कारवान होने की प्रक्रिया को ही आधुनिकता मानते थे। भारतीय आधुनिकता, सांस्कृतिक अस्मिता की खोज। किंतु यह संस्कारवान होने की क्रिया अज्ञेय के यहाँ एक खुली संवेदना की अपेक्षा रखती है, और आधुनिक युग में इस खुलेपन का अर्थ है एक ऐसी युगविद्ध आत्मस्थिति का स्वीकार जहाँ सरलीकरण और आत्मतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं। अज्ञेय में संस्कार और संवेदना का एक ऐसा रचनात्मक और मूल्यबोध संपन्न द्वंद्व प्रारंभ से ही रहा, जो व्यक्तित्व की खोज के निमित्त से एक सांस्कृतिक अस्मिता के शोध से प्रेरित था। उन्होंने स्वयं ही एक जगह लिखा है कि उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं बोलती। जिससे हम बने हैं उसे पहचानते हुए उसे अभिव्यक्ति दें तो वर्तमान और भविष्य हमारे हैं, नहीं तो हम कहीं के नहीं। उद्धरण चिन्ह बंद। अज्ञेय के इस विश्वास को उनकी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप में भी अभिव्यक्ति मिली है। उनके काव्य और चिंतन में ही नहीं, उनके जीवन व्यापी साहित्य आयोजनों और कर्म चेष्टाओं में भी सांस्कृतिक अस्मिता का यह आग्रह बराबर प्रतिफलित होते देखा जा सकता है। संस्कार और संवेदना के द्वंद्व की प्रक्रिया अज्ञेय साहित्य में बराबर देखी जा सकती है। एक आत्मविश्वासपूर्ण और परिपक्व आधुनिक भारतीयता में उसकी परिणति हुई, ऐसा निसंकोच कहा जा सकता है। अज्ञेय के पूर्ववर्तियों में भी, विशेषकर जयशंकर प्रसाद में वैसा सजग सांस्कृतिक व्यक्तित्व दिखाई देता है, और शायद इसी कारण कवि आलोचक विजय देव नारायण शाही को अज्ञेय और प्रसाद के बीच एक आश्चर्यजनक साम्य दिखा। इसमें संदेह नहीं कि क्या बौद्धिक व्यक्तित्व और क्या रचनात्मक विकासक्रम, दोनों ही दृष्टियों से अज्ञेय ही प्रसाद के सबसे निकट जान पड़ते हैं। आधुनिक सभ्यता के संकट का साक्षात्कार अपने जमाने के विचारों की चौहद्दी के भीतर हम प्रसाद में ही पाते हैं। सांस्कृतिक अस्मिता की शोध का कुछ वैसा ही सजग अध्यवसाय हमें प्रसाद में ही मिलता है। इस महत्वपूर्ण अंतर के बावजूद कि प्रसाद जी आस्था के धरातल पर बहुत कुछ ऐसा मानकर चल सकते थे जिसे मानकर चलने की सुविधा अज्ञेय को नहीं थी। इस सिलसिले में यहाँ साहे जी की उस विचारोत्तेजक स्थापना का स्मरण स्वाभाविक है जिसके अनुसार उद्धरण चिन्ह प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। उद्धरण चिन्ह बंद। निश्चय ही प्रसाद की प्रश्नाकुलता से अज्ञेय की प्रश्नाकुलता का स्वरूप भिन्न होना ही था। परंपरा और प्रयोग, नई संप्रेषण स्थिति का स्वीकार। आलोचक श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छायावादियों से अज्ञेय के भावबोध को अलगाते हुए लिखा है कि उद्धरण चिन्ह, अज्ञेय की कविता गैर रोमांटिक है। यह कहना शायद बहुत ठीक न हो, पर अज्ञेय में गैर रोमांटिक कविता की संभावना विवृत होती अवश्य दिखाई पड़ती है। उद्धरण चिन्ह बंद। इसी सिलसिले में चतुर्वेदी जी ने निराला का भी उल्लेख किया है और उचित ही संकेत किया है कि उद्धरण चिन्ह, निराला में जो विद्रोह था वह अज्ञेय में प्रयोग के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण चिन्ह बंद। स्वयं अज्ञेय ने अपने समय की कविता के पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह समझा और समझाया है। उन्हीं के शब्दों में उद्धरण चिन्ह, छायावाद के कवियों ने अपने लिए एक समाज बनाया था जिसका लाभ हमें भी मिला। मैंने और मेरे समकालीनों ने अपने लिए एक समाज बनाया। छायावाद का समाज स्वयं छायावाद के कवियों की तरह वाचिक परंपरा में पला था और पढ़कर कविता ग्रहण करने की ओर आ रहा था। हमारा समाज मुख्यतः श्रोता नहीं पाठक था, जैसे कि कवि भी प्रमुखतः वाचक नहीं लेखक है। उद्धरण चिन्ह बंद। वाचिक परंपरा से पाठ्य कविता की परिस्थिति में संक्रमण के इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक था। अज्ञेय कविता के संप्रेषण की परिस्थितियों को बहुत महत्व देते थे। उनके लिए काव्य अभिव्यक्ति से भी अधिक संप्रेषण था। संप्रेषण की स्थितियां बदलती रहती हैं और उस बदलाव का असर कवि कर्म पर भी पड़ता है। वाचिक काव्य में कवि का अपने श्रोताओं के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता था, इसलिए कवि के लिए अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति अनावश्यक थी। छपाई के आने के साथ कवि का अपने पाठक के साथ संबंध एकदम परोक्ष हो गया। इस परोक्षता के प्रतिकार के लिए अब उन छपे हुए शब्दों के माध्यम से ही एक सूक्ष्म स्तर पर कवि व्यक्तित्व का प्रक्षेपण आवश्यक हो गया था। यह काम छायावाद ने किया। रीत प्रधान भाषा के स्थान पर उसने बिंब प्रधान अंतर जगत की अनेक अर्थ छटाओं का वाली काव्य भाषा रची, किंतु अब एक नई परिस्थिति सामने थी। बढ़ते हुए प्रजातांत्रिक आग्रह के साथ सामान्य जन की भाषा का मुहावरे का दबाव भी काव्य भाषा पर पड़ना स्वाभाविक था। हम देखते हैं कि अज्ञेय के काव्य में यह रूपांतरकारी आत्मविश्वास धीरे धीरे ही आया। जब गद्यकार के रूप में उपन्यासकार की हैसियत से उतने मुक्त नहीं हो पाए थे, उपन्यासकार की हैसियत से उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था, तब कविता में वे छायावादी काव्य भाषा से उतने मुक्त नहीं हो पाए थे। धीरे धीरे ही सही, किंतु अचूक आत्मविश्वास के साथ उनकी भाषा में वह विस्फोटक नयापन आया जिसने हिंदी के काव्य दृश्य को सचमुच निर्णायक ढंग से प्रभावित किया। पारंपरिक दौर का कवित्व, विद्रोह और स्वचेतना। इत्यलम में कवि अज्ञेय की 1933 से 1945 तक की कविताएं संग्रहित हैं। इनमें कवि मन पर पड़ रहे प्रभावों को देखा जा सकता है। विपरीत मनोवृत्तियों का भी द्वंद्व है। एक कविता में कवि कहता है, अपनी कविता भव की छोटी घटनाएं जिनका आधार कैसे उनकी परिमा में भर दूं गहराता पारावार। कवि पाता है कि संपूर्ण तादात्म्य से कम कोई भी उपहार उस देव के योग्य नहीं हो सकता जो धमनी में जीवन रस की तरह, किरणों में आलोक की तरह व्याप्त है। प्रसाद ने आंसू में लिखा था, चुन चुन ले रे कनकन से जगती की सजग व्यथाएं। अज्ञेय भी यहाँ अखिल विश्व की पीड़ा संचित करने की बात करते हैं, क्योंकि वे जीवन के कवि हैं और उसके असंख्य हृदयों के गाथाकार। प्रारंभ से ही हम देख सकते हैं कि अज्ञेय की कविता जीवन की आलोचना भी है और जीवन की रहस्यानुभूति भी। निरंतर आत्मालोचन और आत्मशोधन का आग्रह भी वहाँ बराबर मिलता है। विशुद्ध सौंदर्य की अपेक्षा यहाँ जीवन की अर्थवत्ता की खोज की तड़प अधिक दिखाई देती है। रचना मानव कवि के लिए अपने नैतिक भाविक बौद्धिक व्यक्तित्व की संश्लिष्टता को साधने का, उसी के मुहावरे में कहें तो व्यक्तित्व की खोज का साधन है। ऐसे संपृक्त व्यक्तित्व की खोज का जो फिर समष्टि को निःशेष अर्पित करने योग्य हो। आधुनिक कवि विलियम बटलर एट्स ने कहीं लिखा है कि कवि की तरह परिपक्व होने का अर्थ है समग्र मनुष्य की तरह परिपक्व होना। कोष्ठक में मैच्योरिंग एज अ पोएट मीन्स मैच्योरिंग एज अ होल मैन। कोष्ठक बंद। अज्ञेय की जीवनव्यापी साधना यही रही है। यहाँ उस प्रक्रिया को पहचाना जा सकता है और फिर इस बात को भी कि वह साधना अवस्था बहुत लंबी चलेगी, सिद्धि अभी बहुत दूर है। एक नया यथार्थ बोध भी यहीं से प्रकट हुआ है। व्यंग विपर्यय और आत्मविद्रूप की स्थितियां झलक आती हैं। कवि अपने से बाहर आकर पाता है, मैं ही हूँ वह पदाक्रांत रिर्याता कुत्ता
मैं ही वह मीनार शिखर का प्रार्थी मुल्ला। यहीं से हिंदी कविता में आधुनिक बोध की स्वचेतना की घुसपैठ शुरू होती है। तार सप्तक की एक अन्य कविता में कुहासे की मुट्ठी में सिहरते नग्न बुच्चे, दई मारे पेड़, टीएस एलियट की प्रसिद्ध कविता के एलो फॉग की तरह पाठक को नया संवेदना घात देते हैं। शहरी बिंबमाला और खासी परेशानी में डालने वाली बिंबमाला अचानक छायावादी कवियों की प्राकृतिक और स्वप्निल दुनिया पर आक्रमण करने लगती है। कल्पना जगत के इस तरह एक बदसूरत और बदहवास दुनिया में खदेड़ दिया गया कवि फिर से बार बार अपने अभ्यस्त भाव जगत की स्मृतियों से घिर जाता है, जहां सारे रिश्ते नाते सामाजिक मान्यताएं संदिग्ध हो चुकी हैं, वहां भी एक उदास चेहरा अभी भी कवि के मूल्य निष्ठा को सहारा दिए हुए है। तुम ही मेरा जीवन कुहासा भेद उगा हुआ तारा हो। साथ ही कवि की कविता सुक्ति से आगे बढ़कर बिंब विशिष्ट होने लगी है। जन्म दिवस शीर्षक कविता में नए बिंबों की लड़ी से गुंथ जाती है। स्तब्ध लयबद्ध भौंरा टका सा अधर में, चांदनी से बसा हुआ कोहरा, पीली धूप शारदीय प्रात की, बाजरे के खेतों को फलांगती डार हिरणों की बरसात में। कवि इन सबके प्रति ऋण स्वीकारी है, विनत है। मैं मरूंगा सुखी, वह कहता है, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। इस प्रकार यह दौर विद्रोह और हताशा का ही नहीं, परिस्थिति के साहसपूर्ण आकलन और शक्ति की कामना का दौर भी है। शक्ति संचय का दौर। क्रांति है आवर्त होगी भूल उसको मानना धारा, उपप्लव निज में नहीं उद्दिष्ट हो सकता हमारा। हरी घास पर क्षण भर में संकलित यह कविता के कवि के विकास क्रम की अगली सीढ़ी को सूचित करती है। शक्ति का उपासक तो कवि अब भी है, किंतु शक्ति के उत्पाद का नहीं, बल्कि उसके संचय और उपयोग का। कवि यहाँ मन के स्वयंभू आलोक में उस बंधु को पहचानता है जो उसके हृदय में चिरंतन जागता है। यहाँ आते आते विषाद और आत्मावसाद की मनस्थितियाँ भी आत्मज्ञान साधक बन जाती हैं। इस अभिव्यक्ति में तीक्ष्णता है, सुक्ति सरीखी सघनता है और बिंब सजीव दीप्ति। शक्ति संचय का आंतरिक साक्ष्य देखना हो तो पावस प्रात और दुर्वाचल सरीखी गीतियों के मितकथन में देखा जा सकता है। यहीं से अज्ञेय की असली काव्य उपलब्धि का आरंभ होता है। अभी तक जो केवल आत्माभिव्यक्ति थी, वही अब भाषिक सृजनात्मकता की ओर उन्मुख हो गई है। अनुभव और भाषा के संघर्ष से एक नई अर्थवत्ता की खोज का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रकृति निरीक्षण की सूक्ष्मता, लय के अनूठे प्रयोग, व्यंग विद्रूप के जरिए अपनी भावाकुलता को संतुलित करने की सफल चेष्टा यहाँ देखी जा सकती है। अपने को ही संबोधित करता हुआ कवि कहता है, सुनो कवि, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल। भावनाएं तभी फलती हैं कि उनसे लोक के कल्याण का अंकुर कहीं फूटे। नगर सभ्यता की विद्रूप भरी आलोचना यहाँ और पुष्ट होती है। हम यह भी पाते हैं कि अज्ञेय का कवि धीरे धीरे बिंब से प्रतीक की ओर बढ़ रहा है। हरी बिछली घास और बाजरे की कलगी प्यार के नए प्रतीक की तरह लगते हैं, क्योंकि पुराने प्रतीकों के देवता कूच कर गए हैं। किंतु अभी कवि का बोध त्रासदी या त्रास जनित पावनता के बोध तक नहीं पहुंच पाया है, अभी वह व्यंग विपर्य तक सीमित है। तो भी इस अर्थान्वेषी कवि का संसार इकहरा नहीं है, उसमें अनुभवों का एक विस्तृत वर्णपट झलकता है। ये अनुभव प्रेम और प्रकृति से जुड़े हैं। अज्ञेय की प्रेमानुभूति एक पीड़क आधुनिक स्वचेतना के साथ सदा ही एक उच्चतर नैतिक बोध से जुड़ी रही है, और यही बात उनके प्रकृति संवेदन की तरह उनकी प्रेमानुभूति को भी तीखी और धारदार बनाती है। कभी तो अनुभूति उमड़ेगी प्लवन का सांद्र घन भी मन। यह आशा और इसका अनासक्त अर्थोन्मेषी आग्रह यदि अज्ञेय में है तो प्रसाद की परंपरा के मेल में ही है। आसक्ति नहीं, आनंद है संपूर्ण व्यक्ति की अभिव्यक्ति, अज्ञेय की इसी दौर की एक कविता स्पष्ट घोषित करती है। अज्ञेय की सबसे बड़ी विशेषता नकारों का सामना करते हुए उनके बीचोंबीच से जीवन के प्रति बुनियादी आस्था और स्वीकृति को उबार लाना है। नश्वरता का स्वीकार उन्हें जीवन की अर्थवत्ता का विलक्षण स्वाद सुलभ कराता है, उनके शिवत्व बोध को जगाता है तथा कर्मठ बनने की प्रेरणा देता है। अनुभव परिपक्वता, आंगन के पार द्वार और उसके सार। आंगन के पार द्वार असाध्य वीणा इसी संग्रह में है, में एक कविता है अनुभव परिपक्व, जिसके आरंभ में एक बालक माँ से गाने वाले लट्टू की मांग पर अड़ा हुआ है। थोड़ी ही देर बाद उसकी मांग घटकर कागज की फिरकी तक आ जाती है और अंत में वह कह उठता है, अच्छा माँ, मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। यह कविता 1961 की है। तब से अज्ञेय के काव्य चिंतन और लोक यात्रा में जाने कितने मोड़ आए, किंतु वे सब लगता है इस अनुभव परिपक्व बालक द्वारा दिए गए वचन के मेल में ही है। अज्ञेय की काव्य भाषा में निरंतर परिष्कार और खुलाव आता गया है। निश्चय ही विद्रोह और हताशा की आत्मस्थितियाँ बाद के दौर में भी कभी कभी उभरती देखी जा सकती हैं, और बिना किसी आशा के आत्मदान में सार्थकता पाने की तड़प पहले की रचनाओं में भी देखी जा सकती है। आंगन के पार द्वार में आगे के आत्मविकास का पूर्वाभास मिलता है। जिस तरह चक्रांत शिला की कविताओं में कवि पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिक संपदा को टटोलता दिख पड़ता है, उससे ऐसा नहीं लगता कि उसकी स्थिति केवल बिना किसी आशा के आत्मदान में सार्थकता पाने की स्थिति है। कहने को T.S. एलियट भी इसी तरह की बात कहता है, कोष्ठक में बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, उद्धरण चिन्ह बंद, कोष्ठक बंद। किंतु है तो अंततः स्वर्ग और नरक की परिक्रमा करने वाले दांते का शिष्य ही। क्या हम इसी तरह अज्ञेय को भी नकारों की निर्जल पारावार को लांघ कर सब कुछ धारण करने वाली पारमिता करुणा तक पहुंचने की बात करते नहीं देखते? यह अकारण नहीं हो सकता कि अज्ञेय अपने प्रौढ़ काव्य में न केवल बौद्ध और ईसाई अवधारणाओं तथा प्रतीकों का उपयोग अनिवार्य पाते हैं, अपितु वैदिक ज्ञान प्रतीकों का भी। कितनी नावों में कितनी बार का कवि तो स्पष्ट कहता है, है राह कुहासे तक ही नहीं पार देहरी के है, मैं हूं तो वह भी है। सागर मुद्रा में कवि एक दुस्साहसी हेमंती फूल को देखता है और कहता है कि मेरा युद्ध प्रकृति की सृष्टियों में नहीं मानव की अपसृष्टियों से है। यह युद्ध कहना न होगा, कवि अज्ञेय के प्रत्येक संग्रह में नए सिरे से लड़ा जाता रहा है। खुले में खड़ा पेड़ देखकर मानव की संभावना और विडंबना का इकट्ठा साक्षात्कार कवि को होता है। स्वतंत्र संग्राम में अपने युवा जीवन की आहुति देने वाला कवि देश की स्वातंत्र्योत्तर दुर्दशा से विक्षुब्ध दिखाई पड़ता है। उसकी कविता सदा से जहां एक और आत्म परिष्कार आत्म परीक्षण का साधन और प्रक्रिया रही है, वहीं उसमें जीवन की आलोचना ही बराबर प्रस्तुत होती रही है। आंगन के पार द्वार को पढ़ते हुए यह शंका मन में उभरी थी कि कहीं यह दूसरा पक्ष कवि के हाथ से छूट तो नहीं जाने वाला है, किंतु बाद के संग्रहों ने इस शंका को निर्मूल सिद्ध कर दिया। नंदा देवी सीरीज की कविताएं इस दृष्टि के उल्लेखनीय हैं। यहां जीवन की आलोचना भी है और आत्मा की खोज भी। अपनी विकल आलोचना और निराशा का यथावत सामना करने के कारण ही कवि आशावान है, इसी कारण उसकी आशा अधिक मूल्यवान हो जाती है। अरे ओ करुणा प्रभावें में एक बड़ी ही मर्मस्पर्शी कविता है, वहां पर बच जाए जो। वहां कवि आत्मदान की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। वह कविता एक तरह से आधुनिक कवि की विनय पत्रिका सरीखी है। उसके 20 वर्ष बाद पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं कि कविताएं उस गहरी अंतर्यात्रा की गवाही देती है जहां कवि उस विषाद योग से क्रमशः उबरता हुआ अपनी जोखम से निखरी आस्था को झलका सका है। चूंकि उसकी आंखों ने हार दुख अवसान मृत्यु का अंधकार भी देखा तो सच सच देखा, इसलिए इसी अपने सत्य आग्रह के बूते कवि कह सका है कि इस पार उन्हें जब आवे दिन ले जावे, पर उस पार उन्हें फिर भी आलोक कथा सच्ची कहने देना, अपलक हंसती रहने देना। कवि अपने अंतर्मन और बहिर्मन के बीच कलह की जड़ नहीं मथानी देखता है और उसी से होने के सागर को मथने का आह्वान करता है। चाहे जरा व्याध शीर्षक की क्रमागत कविताएं हों, चाहे अंतिम संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है में प्रकाशित और फिर उस सीरीज की कविताएं, हम पाते हैं कि मानव नियति का ऐसा दर्शन शेखर के नियतिवाद को काफी पीछे छोड़ आने के बाद ही संभव हो सकता था। और फिर उसकी को ही देखिए, क्या उसका संगीत असाध्य वीणा के संगीत का स्मरण दिलाता हुआ अभी उससे आगे नहीं निकल जाता? त्रासजनक पावनता का बोध और किसे कहेंगे? मृत्यु को, मृत्यु का आलोक जीवन को, जीवन का ओ जीवन ओ मरण ओ वृंदवाद्य हम गाते हैं जहां है साथ दो। अज्ञेय का चिंतक रूप। अज्ञेय कवि के साथ साथ चिंतक भी रहे हैं। उनका विश्वास था कि हिंदी अपने स्वभाव और स्वधर्म से ही आगे देखने वाली भाषा रही है। आधुनिकता का संस्कार सदा से इसके साथ रहा। उद्धरण चिन्ह बंद। इस अकाट्य तर्क के आधार पर ही अज्ञेय ने चिंतन के स्तर पर हिंदी साहित्य में आधुनिक भावबोध की प्रतिष्ठा की, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में उद्धरण चिन्ह हिंदी का यह परंपरागत दायित्व है कि वह जिस अर्थ में आधुनिक थी उसी अर्थ में आधुनिक बनी रहे। उद्धरण चिन्ह बंद। त्रिशंकु में अज्ञेय ने एक आलोचक राष्ट्र के निर्माण का सपना यो ही नहीं देखा था। अज्ञेय के सामने भी प्रसाद और एलियट की तरह एक चुनौती थी, रूढ़ी का बासीपन और मुर्दनी दूर करने की। रचनात्मक अनुभूति के स्तर पर अपनी जीवंत परंपरा को स्वायत्त करने की। अज्ञेय के लिए समस्या अपने से बाहर आकर विज्ञान की नई दृष्टि से भी परंपरा को टटोलते हुए आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ने की समस्या बनी। एलियट के विपरीत अज्ञेय का संबंध प्रकृति के साथ अधिक सहज तथा घनिष्ठ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभ्यता के आवरण और कविता की चर्चा करते हुए प्रकृत रूप के प्रत्यक्षीकरण की राह में आने वाली जिन आधुनिक बाधाओं का जिक्र किया था, अज्ञेय उनसे भली भांति परिचित थे। इसी तरह एलियट के विपरीत अज्ञेय की निष्ठा मानवोन्मुख रही है और इस दृष्टि से गुणात्मक उत्कर्ष भी उत्तरोत्तर आता गया है। एक जगह वे पूछते हैं कि क्या कोई मानव केंद्रित आध्यात्मिकता संभव है। वे सत्य, रित, तप और आवर्ती काल के भारतीय मूल्यों के मानव जीवन मात्र के बुनियादी मूल्यों से जोड़ते हैं। अज्ञेय के परवर्ती प्रौढ़ चिंतन से गुजरते हुए पाठक अनुभव करता है कि वह प्रारंभिक काल के त्रिशंकु में व्यक्त विचारों का गुणात्मक उत्कर्ष ही नहीं अपूर्वानुमेय विकास भी है, एक ऐसी दिशा में जिसे भारतीय आधुनिकता कहा जा सकता है। इस भारतीय आधुनिकता में नैतिकता की वह कसौटी, वह अंत प्रमाण भी निहित है जो स्वयं अज्ञेय के कथनानुसार जीवन का और आत्मदर्शन का एक संतोषजनक आधार देने वाला है। जैसा कि स्रोत और सेतु में उन्होंने स्पष्ट भी किया है, उद्धरण चिन्ह नैतिक अनैतिक की परख भी कुछ अहिमूल्यों के आधार पर होती है जो अंततो गत्वा आध्यात्मिक हैं और साथ ही विकासमान भी हैं, स्थिर या जड़ नहीं है, क्योंकि मानव जड़ नहीं है। उद्धरण चिन्ह बंद। निबंध समाप्त।